शादी निर्विघ्न संपन्न हो चुकी थी, सभी विधि विधानों के साथ और बड़ों के आशीर्वाद के साये तले दृशांत और पल्लवी परिणय सूत्र में बंध चुके थे। उनकी पाक मोहब्बत विवाह के अटूट बंधन में बंध गई थी। पल्लवी, जो सगाई से पहले दृशांत की जिंदगी में शामिल होने का ख्वाब भी देखने से कतराती थी और जब उसके लिए रिश्ते देखे जा रहे थे तो अपने दिल को अपनी नाकाम मोहब्बत के लिए तैयार कर लिया था, आज उसने दृशांत को पा लिया था। एक तरफ अपनी अधूरी मोहब्बत के मुकम्मल होने की खुशी थी तो दूसरी तरफ अपने परिवार से बिछड़ने का दुख। इस दुख में दृशांत उसका संबल बना था और वो थोड़ी सुकून में थी कि भले ही उससे उसका घर परिवार छूटा था पर उनसे ज्यादा दूर नहीं जा रही थी। भले अब उनके साथ नहीं रहेगी पर जब दिल चाहेगा उनसे मिल सकती है। विदाई में उसकी आंखें भीगी थी और उसको संभालती आहाना भी भावुक हो गई थी। पूरी शादी में उसने अपनी आने वाली जिंदगी की कल्पना की थी। 3 महीने बाद यही सब रस्में उसे भी निभानी होंगी और अपने परिवार को छोड़कर उनसे इतना दूर जाना होगा, ये सोचकर ही वो भावुक हो गई थी। अंतरा पूरी शादी के दौरान निशांत से गुपचुप बातें करती रही थी। अन्वय की निगाहें बार बार उस पर ठहर रही थी। वहीं अक्षय की निगाहें गैर मामूली तौर पर आहाना पर टिकी थी, जो हर रस्म में पल्लवी के साथ उसका हमसाया बनकर रही थी। कहीं ना कहीं अक्षय की आंखों में भी आने वाले कल के सुनहरे सपने सजने लगे थे। जितेंद्र जी ने तो बाकी बाराती संग उन्हें भी घर जाकर आराम करने को कहा था, पर उनका कहना था कि और किसी रस्म में तो हिस्सा न ले सके, अब शादी तो पूरी देखकर ही जाएंगे। विदाई के बाद सब शुक्ला निवास के लिए निकल गए, जहां नई बहू के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। सबसे आखिर में पल्लवी और दृशांत की गाड़ी शुक्ला निवास के बाहर आकर रुकी थी। उनके साथ अनु भी थी। पल्लवी अब तक संभल गई थी। तीनों लॉन पार करते हुए अंदर आए तो दहलीज पर अंतरा और उसके साथ बाकी लड़कियां हाथ कमर पर रखे खड़ी उनका ही इंतजार कर रही थीं। तो अब तुम सब नेक के नाम पर मुझे लूटने के लिए गैंग बनाकर यहां इकट्ठी हुई हो, दृशांत ने उड़ती नजर सब पर डालने के बाद अंतरा की ओर निगाहें घुमाई। अंतरा ने तो तुरंत ही एतराज जताया और मासूम अंदाज में बोली, नहीं भैया, मुझे तो कोई नेक नहीं चाहिए आपसे। मैंने तो इन सबको भी मना किया था पर इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं और मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा, इतनी नेक कब से हो गई तुम कि मुझसे पैसे ऐंठ मेंगा हाथ आया मौका यूं ही छोड़ दो? और इतनी शरीफ और मजबूर तो तुम कभी से नहीं कि कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे कोई काम करवा ले? दृशांत भौं उछालते हुए गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। उसका तंजिया अंदाज सुनकर अंतरा खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, हे, कितने अच्छे से जानते हैं ना भैया आप मुझे, पर अब की बात मुझे सच में आपसे पैसे नहीं चाहिए, वो आप इन सबको दे देना। मैं तो ये सोच रही थी कि भैया मेरी धन्नो कितनी पुरानी हो गई है, बेचारी हर कुछ दिन में बीमार भी पड़ जाती है। कल तो बहुत रो रही थी और शिकायत कर रही थी कि अब क्या मेरी लाश को भी घसीटेगी, अब तो बख्श दे मुझे। अंतरा की नौटंकी जारी थी और दृशांत अब सारा माजरा समझ चुका था। उसने तीखी निगाहों से उसे घूरा, नई स्कूटी के लिए इतना नाटक कर रही हो? नहीं, इस बार स्कूटी नहीं, बाइक लेनी है, अंतरा ने तबाक से जवाब दिया और आंखों में चमक भरे बड़ी ही उत्सुकता से उसे देखने लगी। वहीं दृशांत के चेहरे के भाव उसकी बात सुनते ही बदल गए और उसने तुरंत ही सख्ती से इनकार किया, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? अंतरा ने चौंकते हुए सवाल किया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वहीं दृशांत ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और सख्त लहजे में जवाब दिया, स्कूटी है तब तो तुम्हारे पांव घर में नहीं टिकते, पूरे कानपुर में हुड़दंग मचाती फिरती हो, बाइक दिला दी तो बवाल ही मचा दोगी तुम। अभी एक शिकायत आती है तब 4 आया करेंगी, पता चले कि दूसरों के साथ अपने हाथ पैर भी टुड़वाओ, इसलिए तुम्हें बाइक नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं स्कूटी मिल जाएगी। भैया, अंतरा ने क्यूट सी शक्ल बनाकर बेचारगी से उसे देखा पर दृशांत का फैसला नहीं बदला। अंतरा ने अब मदद की गुहार आहाना से लगाई तो उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दिया। अगले ही पल अंतरा चहकते हुए उसके गले से लग गई। थैंक यू सो मच जीजी, आई लव यू, आप दुनिया की सबसे अच्छी जीजी हैं। अपनी बहन की नौटंकी देखकर आहाना हंस पड़ी और अक्षय की निगाहें उसके मुस्कुराते चेहरे पर ठहर गईं। अंतरा कुछ पल बाद इससे अलग हुई और दृशांत को देखकर ऐठते हुए बोली, जाइए, मत दिलाइए आप हमें बाइक, हमारी जीजी दिलाएंगी, आप बस भाव खाइए और हम हमारी फटफटिया पर पूरे कानपुर की सैर करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, दृशांत हौले से मुस्कुराया। वहीं उसकी मुस्कान देखकर अंतरा का जी जल उठा और उसने बुरा सा मुंह बना लिया। दृशांत ने अब आहाना का रुख किया, अनु तुम्हें क्या चाहिए गुड़िया? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप पल्लवी को खुश रखिएगा, आहाना ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया और दृशांत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए हामी भर दी। भैया हमें भी नेक चाहिए। दृशांत अपनी दोनों बहनों से निपटा ही था कि निशांत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और दृशांत की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। ये रस्म तो बहनों की होती है, फिर तुम्हें किस बात का नेक चाहिए? सब रस्म में नेक लड़कियों को ही क्यों मिलता है, हमें तो कोई पूछता भी नहीं। भाई को नेक मिलने की भी कोई रस्म होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम लड़कों के साथ इस मामले में बहुत नाइंसाफी होती है। अन्वय ने उसकी शिकायत पर सहमति जताते हुए उसका साथ दिया। निशांत ने निराशा से मुंह लटका लिया और मायूस हो गया। उसका उदास चेहरा देखकर दृशांत ने बेबसी और अफसोस से सर हिलाया। अब तुम मंत्रा जैसे अपनी नौटंकी न शुरू कर देना, बता देना क्या चाहिए, मिल जाएगा तुम्हें। सच्ची भैया? निशांत ने खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से सवाल किया, जिस पर दृशांत ने सर हिलाते हुए अपनी सहमति जता दी। निशांत की आंखें खुशी से चमक उठी, शायद कोई बढ़िया तरकीब और बढ़िया सी फरमाइश सोच रखी थी उसने, और अब वो बेहद खुश और उत्सुक था। यूं ही थोड़ी नौटंकी और भाई बहन की प्यार भरी नोकझोंक के बीच नए नए विवाहित जोड़े का घर में स्वागत किया गया। उन्होंने कुल देवी देवता और पूर्वजों का भगवान का आशीर्वाद दिलाया गया। एक आध रस्में भी हुई, फिर पल्लवी को अंतरा के साथ उनके कमरे में भेज दिया गया और बाकी मेहमान भी नहाने धोने में लग गए थे। आहाना जयंती जी के साथ मिलकर उनके चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अन्वय नहाकर तैयार होकर निशांत के साथ छत पर चला गया था और अक्षय नहाने गया हुआ था। कुछ देर बाद वो बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अक्षय अपने भीगे बालों को आईने में देखते हुए उंगलियां घुमाते हुए उन्हें सेट कर रहा था, जब दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दस्तक दरवाजे पर थी या सीधे दिल पर, ये बताना जरा मुश्किल था, क्योंकि एक आवाज बाहर से आई थी तो एक आवाज उसके दिल से आई थी, धड़कन की। जानी पहचानी से खुशबू हवाओं में घुलकर उसकी सांसों को महका गई और लब बेसाख्ता मुस्कुराए। आ जाइए, पीछे की ओर पलटते हुए उसने कहा, और चंद लम्हों बाद दो सकुचाते कदमों ने कमरे में कदम रखा। सादे से गोल्डन कलर के सूट में सादगी में लिपटी आहाना हिचकिचाते हुए अंदर आई। उसकी झुकी लरजती पलकें और आपस में भीचे होंठ, चेहरे पर बिखरे घबराहट की छुटपुट बूंदे, अक्षय की मुस्कान गहरी हो गई। मम्मी ने आप दोनों के लिए नाश्ता भेजा है और कहा है कि खाकर कुछ देर आराम कर लें, फिर रस्में शुरू हो जाएंगी। आहाना ने हाथ में पकड़े ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहा और जैसे ही जाने को पलटी, अक्षय को अपने सामने खड़ा पाया। हड़बड़ी में उसके आगे बढ़ते कदम ठिटके और आंखों की पुतलियां घबराहट और हैरत के मारे फैल गईं। आहाना को घबराते देखते अक्षय ने अपने कदमों को पीछे हटाते हुए सवाल किया, जाने के लिए क्या कहा मम्मी पापा ने? हाँ, हमें तो कुछ नहीं कहा, आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा, आहाना ने हड़बड़ी में जवाब दिया और झट से साइड से निकलकर तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गई। अभी वो चंद कदम ही चल सकी थी कि अक्षय की सर्द आवाज उसके कानों से टकराई, आहाना।
जाने किन एहसासों के तहत आहाना के आगे बढ़ते कदम ठिटके थे और दिल की धड़कनें थम गई थीं। जी, उसकी जबान भी लड़खड़ा गई। यूं ही जाने देंगी हमें? अक्षय ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए गहरे स्वर में सवाल किया, जिसे सुनकर आहाना झटके से उसकी ओर पलटी और उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। अक्षय उसके सामने आकर ठहरा और उसकी आंखों में झांकते सवाल को समझते हुए संजीदा लहजे में आगे कहा, रुकने को नहीं कहेंगी हमें? हमारे कहने पर आप रुक जाएंगे? आहाना ने सवाल के बदले सवाल किया और उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी थी। अक्षय ने उसके सवाल पर उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, शायद, आप कहकर तो देखिए, हक है हमें? क्या लगता है आपको, नहीं है आपको हक? अक्षय ने आहाना के सवाल के बदले सवाल किया। आहाना कुछ पल खामोशी से उसे तकती रही, फिर निगाहें झुकाते हुए धीमे स्वर में बोली, पता नहीं, शायद नहीं है। आहाना, सगाई हो गई है हमारी और जल्दी ही शादी होने वाली है, इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका मुझ पर अधिकार नहीं? रिश्ता जुड़ जाने से एक दूसरे पर अधिकार तो नहीं मिल जाता, हक हासिल या छीना नहीं जाता और ना ही खैरात में दिया जाता है, उसे तो प्रेम, अपनेपन, समर्पण और विश्वास से कमाया जाता है। जिसे दिल अपना मान ले, उससे कोई रिश्ता ना होते हुए खुद से जुड़े सभी हक पूरे हक से सौंपे जाते हैं, और जहां दिलों में दूरियां हों वहां कोई रिश्ता, कोई बंधन मायने नहीं रखता और ना ही कोई हक होता है, वहां सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं। आहाना के जवाब ने अक्षय को निशब्द कर लिया। कुछ पल तो वो अचरज से उसे देखता रहा, फिर बेहद संजीदगी से बोला, शायद अभी आपने मुझे दिल से अपना नहीं माना, इसलिए खुद पर मेरा हक न समझती हूँ, पर मैंने आपको और इस रिश्ते को दिल से स्वीकारा है। आपसे रिश्ता जुड़ने के साथ मैंने आपको खुद पर सभी हक सौंप दिए थे, पर आपको लगता है कि मेरा आप पर और आपका मुझ पर हक नहीं, तो इसके लिए मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं। बस इतना कहूंगा कि जिस दिन आप मुझ पर अपना हक समझने लगे, उस दिन उस हक का इस्तेमाल करके पूरे अधिकार से रुकने को कहिएगा, वादा रहा, आपको निराश नहीं करूंगा। अक्षय ने अपनी बात कही और मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे हटा लिए। आहाना ने पलकें उठाकर पल भर को उसे देखा और जैसे ही उसके मुस्कुराते लबों पर नजर पड़ी, उसने हड़बड़ी में अपनी आंखों पर पलकों के घने झालर को बिछा लिया और जरा हिचकिचाते हुए बोली, हक नहीं जता रहे, पर एक निवेदन करना था आपसे, अगर आपके पास वक्त हो तो आज रुक जाइए, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। आहाना ने अपनी बात कही और झट से जाने को पलट गई। पीछे खड़ा अक्षय आहाना को देखता ही रह गया। नाश्ते के बाद सबने कुछ देर आराम किया और उसके बाद जो रस्में शुरू हुई सो शाम तक चली। रस्मों में खूब नोकझोंक, चुहलबाजियां, मौज मस्ती चली, छेड़छाड़ भी जमकर हुई और सारा दिन घर में रौनक लगी रही। आहना कभी रस्मों की तैयारी में लगती तो कभी मेहमानों के नाज नखरे उठाती, उनकी मेहमानबाजी करती, कभी पल्लवी के पास आती। सारा दिन उसे एक मिनट के लिए भी चैन नहीं मिला था, जबकि अंतरा मस्ती में लगी थी। अक्षय की निगाहों ने आज जी भरकर कभी सामने से तो कभी छुपकर उसे निहारा था। उसके कहने पर रुक तो गया था, पर दोपहर बीतते ही घर से रूपाली जी के फोन पर फोन आने लगे थे। अन्वय तो अक्षय के होने से बिल्कुल ही बेफिक्र था और निशांत और उसके बाकी कजिन्स के साथ खूब मस्ती मजाक कर रहा था, हर रस्म को खूब एंजॉय कर रहा था। कुछ रस्में और बची थीं जो कल होनी थीं, तो शाम को अक्षय ने जितेंद्र जी से जाने की इजाज़त मांगी। कामों में लगी आहना ये सुनकर पल भर को ठिठकी और निगाहें अक्षय की ओर उठ गईं। बेटा अभी निकलोगे? बाहर अंधेरा गहराने लगा है, रात के अंधेरे में इतनी दूर सफर हमें ठीक नहीं लग रहा, सुबह निकल जाइएगा। जाना जरूरी है पापा जी, अगर रुकना मुमकिन होता तो जरूर ठहर जाते, आपकी बात काटकर कभी नहीं जाते। सुबह मेरा वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, अभी निकलेंगे तो रात पर घर पहुंच जाएंगे और सुबह वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाऊंगा, इसलिए इजाज़त चाहता हूं। अक्षय ने अपनी मजबूरी बताई, जिसके बाद जितेंद्र जी विचलित तो हुए पर कुछ कह ना सके। मन तो नहीं था ऐसे रात में जाने देने का, उसका काम था जिससे उसे मुंह मोड़ने कहना भी ठीक नहीं, इसलिए वो मान गए। ठीक है दामाद जी, अगर आपका जाना आवश्यक है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, पर कुछ देर और ठहर जाइए, रात का खाना खाकर निकलिएगा। जी जरूर, अक्षय ने मुस्कुराकर हामी भरी और नज़र आहना की ओर घुमाई। पल भर को उनकी नज़रें टकराईं और अगले ही पल आहना चेहरा फेरते हुए सीधे रसोई में चली गई। अंतरा भी उसके पीछे पीछे चली आई। जीजी, जीजू तो अभी जाने की बात कर रहे हैं, रात के अंधेरे में इतनी दूर ड्राइव करके जाना तो सेफ नहीं होगा, आप उन्हें आज रात रुकने को कहिए ना, सुबह होते ही निकल जाएं। उनका जाना जरूरी है अंतरा, तुमने सुना ना, हॉस्पिटल में काम है उन्हें, अपने फर्ज से पीछे हटने पर हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, वैसे भी हमारे कहने से क्यों रुकेंगे वे। आहना ने खुद को काम में व्यस्त दिखाते हुए जवाब दिया। कोशिश तो उसने पूरी की थी, पर फिर भी उसके शब्दों में मायूसी झलकने लगी थी। उसकी बात सुनकर अंतरा ने तुनकते हुए कहा, क्यों नहीं रुकेंगे आपके कहने पर, आप मंगेतर हैं उनकी, शादी होने वाली है आपकी उनसे, पूरा हक है आपका उन पर, आप कहकर तो देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी बात नहीं टालेंगे। रहने दो अंतरा, हमें कुछ नहीं कहना, उनका जाना जरूरी है। इस मामले में आहना का इतना रूखा रवैया देखकर अंतरा खींचते हुए चुप रह गई। कुछ देर में सबने डिनर किया। अन्वय और अक्षय उस कमरे में चले आए जहां उनका सामान था। जयंती जी उनकी विदाई की तैयारी में लग गईं। अब घर का दामाद पहली बार घर आया था, खाली हाथों से विदा नहीं कर सकते थे, कपड़े मिठाइयां पैक करनी थीं।